WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
क्या आपके घर के अप्लायंसेज खराब हैं? अब फिक्र की कोई बात नहीं, सीजीसी होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग ला रहा है आपके लिए एक माहिर टेक्नीशियन जो आपके अप्लायंसेज रिपेयर करके देंगे बेहतरीन सर्विस के साथ। चाहे आपका एसी हो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, डिशवॉशर या माइक्रोवेव, जो भी आपके अप्लायंसेज खराब हो ये उसको रिपेयर करके देंगे और इनकी डायग्नोस्टिक फीस है सिर्फ $90। तो आज ही कॉल कीजिए 416-571-4895 या इनकी वेबसाइट विजिट कीजिए cgcappliances.com।
सिर्फ $100 में एक नाबीना शख्स की बिनाई बहाल करें, आपका अतिया एक जिंदगी बदलने वाले मोतिये का ऑपरेशन मुमकिन बना सकता है। एक यतीम बच्चे की कफालत करें, एक जिंदगी बदलें। सिर्फ $50 महाना एक यतीम बच्चे के लिए उम्मीद की किरण है। 1983 से इंसानियत की खिदमत में मसरूफ, दिल से कदम बढ़ाएं, आज ही डोनेशंस दें @almustafacanada.org।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मीन परमार, प्रिंसिपल ब्रोकर। कॉल टुडे 6479235659 6479235659। स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी। लाइसेंस नंबर 13654।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਸੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, या कॉल करो 905-450-2828, 905-450-2828।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 4168945872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 4168945872।
और हर ट्यूसडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो।
वेलकम बैक तमाम सामेईन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और आपका हमारा साथ आज भी 8:15 बजे तक रहेगा। आप भी हमें स्टूडियो कॉल कर सकते हैं 4166201778। और पाकिस्तान में 14 अगस्त शुरू हो गई है, यहां पर जो है आज रात मुझे लगता है कि हालात ऐसे हैं, मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, ना को इसकी प्रमोशन करूंगा कि शायद फायरवर्क्स होंगी और वन एंड ओनली एक ही प्लाजा है, आप लोग सब जानते हैं मिसिसागा में, तो मुझे लगता है आज रात भी ये बहुत शोर शराबा करने वाले, तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन जनाब जो कॉन्सुलेट की जानिब से ऑफिशियल फ्लैग रेजिंग होगी वो कॉन्सुलेट के अंदर होगी, कल सुबह 11:30 बजे फ्लैग सेरेमनी होगी। तो अगर आप में से कुछ लोग वहां पहुंचना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान कॉन्सुलेट पहुंच सकते हैं, वॉन में है ये, इनका एड्रेस है 7880 कील स्ट्रीट और वॉन में, और सुबह 11:30 बजे जो है ये फ्लैग सेरेमनी वॉन में कॉन्सुलेट के अंदर होगी। आप सुन रहे हैं 770 AM डायल प्रोग्राम साजो आवाज, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और जनाब आपने हमारे स्पॉन्सर्स को जरूर ताउन देना है। तमाम स्पॉन्सर्स के नंबर हमारी वेबसाइट eawaz.com पर मिल जाएंगे, यहां आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, इसके अलावा तमाम स्पॉन्सर्स के नंबर भी हमारी वेबसाइट eawaz.com पर मिल जाएंगे। चले जनाब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 9 अगस्त तो नहीं लेकिन अगस्त का महीना है, 6 और 9 अगस्त की बात कर लेते हैं, 6 और 9 अगस्त क्योंकि अगस्त का महीना है, तो ऐसे मुल्क की बात करते हैं और उसकी तरक्की की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आज 14 अगस्त भी हो गई है और कल कनाडा में 14 अगस्त हो जाएगा, तो एक ऐसे मुल्क की दास्तान थोड़ी सी शेयर करते हैं जिसमें हमें समझना होगा कि कैसे उस कौम ने, उस मुल्क ने, जबकि उनके ऊपर 2 एटम बम, एक नहीं 2 एटम बम गिरा दिए गए, और पहला एटम बम गिराया गया 6 अगस्त 1945 को और दूसरा एटम बम गिराया गया 9 अगस्त 1945 को, और ये अमेरिका की तरफ से फर्स्ट टाइम इस बम को गिराया गया किसी भी मुल्क के ऊपर, वो मुल्क था जापान। तो 1945 पे कह लें कि जापान को जब ये बॉम्ब गिराया गया तो बिल्कुल ही जापान को जीरो कर दिया था, उसके 2 शहर तो मुकम्मल तबाह कर दिए गए थे और पूरा ही जापान तकरीबन खंडर का जो है वो खंडर की तरह जो है उसकी शक्ल दिखने लगी थी, लाखों लोग जो है बेरोजगार हो गए थे और आधा मुल्क मलबे का शिकार भी हो गया था। उनकी जो कहते ना कि 300% उस वक्त महंगाई, ये हालत हो गई थी कि जो महंगाई है 300% वहां महंगाई इस बॉम्ब के गिरने के बाद हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और यूं समझ लें कि जो जीडीपी भी है उनका तकरीबन जो है वो 50-60% जीडीपी भी जो है उनका उस वक्त रेट गिर गया था। लेकिन 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 इस 2 एटम बम गिरने के बावजूद, गुर्बत में जाने के बावजूद, तबाही मतलब कहेंगे पूरा मुल्क खंडर बन गया, उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ 25 साल के अंदर जापान जो है वो दुनिया की बड़ी इकॉनमी बनकर जो है वो सामने आता है। ऐसा क्या किया जापान ने कि जब तबाह बर्बाद हो गया, जीरो हो गया, और आज समझ लें कि जापान जो है शायद अगर मैं रॉन्ग नहीं तो तीसरी या चौथी बड़ी पावर जो है वो जापान है इस वक्त, फोर्थ पावर है बड़ी, तो जनाब फोर्थ पावर इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक है चैलेंजेस जापान के हैं उस पर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन कैसे 1945 में तबाही होने के बावजूद जापान ने जो है वो अपना आपको रीबिल्ड किया, उसके कुछ फैक्टर्स थे। एक तो फैक्टर जैसा जब जहर जापान के ऊपर एटम बम गिराया गया तो बिल्कुल जर्मनी की तरह भी जैसे टुकड़े किए गए, तो यहां पर भी प्लान यही था कि जापान के टुकड़े कर दिए जाएंगे, उसके 3 से 4 लोग तो मेनली इसके दावेदार थे जिसमें एक ऑफकोर्स यूके था और अमरीका था और दूसरी तरफ चाइना था और कुछ पार्ट जो है वो रशिया के पास जो था, सोवियत यूनियन जो उस वक्त का था, उन्होंने इसके ऊपर जो है अपनी दावेदारी यानी हुकूमत जो है वो जमाने की कोशिश की। लेकिन आपको मालूम है कि 1945 का वो टाइम था जब बर्तानिया उस वक्त जो है इस चीज को ایک نئی کالونی کو افورڈ کرنے کے لیے نہیں تھا. ظاہر ہے اس کے بھی مالی حالات اتنے بہتر نہیں تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت, تو اس نے اس چیز کو وڈرا کیا اور وہاں سے جاپان جو ہے چلا گیا. چائنا میں بھی جو ہے وہ ماؤز کا ٹائم نہیں تھا, وہاں پر بھی انٹرنل جو ہے وہ بغاوت کا سلسلہ جاری تھا, ماؤ ابھی نہیں آئے تھے. تو چائنا نے بھی اپنا کچھ حصہ جو کہ آپ جس حصے میں جیسے تائیوان جیسے آج کا حصہ ہے اس حصے کو چائنا نے جو بھی ہے اس کو انٹرسٹ نہیں لیا اور پیچھے ہو گیا, اور یو ایس ایس آر اس وقت جو ہے کولڈ وار کا شکار تھا وہ بھی پیچھے ہو گیا. تو ہول سول ون اینڈ اونلی ملک اس وقت جو کھڑا رہا, حالانکہ اس نے ہی بمباری کی, انہوں نے ہی اس کے اوپر ایٹم بم گرایا, پھر امریکہ نے ہول سول جاپان کا جو ہے وہ ٹیک اوور کیا. اور سیکنڈ ستمبر 1945 کو فائنلی جو ہے جاپان نے سرنڈر کیا اور اس سرنڈر نامے پر دستخط بھی کر دیے. اب ہوا کیا, اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو بھی پھانسی دی گئی, بہت سے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ فارغ کیا گیا. سب سے پہلی چیز امریکہ نے وہاں پر کی اس وقت کے ٹائم پر, جو انہوں نے سب جو وہی بات ہے نا کہ اب آپ سنیں گے تو بولیں گے یار کاش ایسا پاکستان, حالانکہ پاکستان آزاد ہوا ہے 1947 کو, ہمیں بھی تقریباً 78 برتھ ڈے ہم یہاں منا رہے ہیں اور جاپان کا اگر کہنے کے زیرو کیا, حالانکہ جاپان پہلے سے موجود تھا آف کورس لیکن اس کو زیرو کر دیا 1945 میں جب ایٹم بم گرایا. تو وہاں امریکہ پہنچنے کے بعد امریکہ نے جاپان کے اوپر کئی پابندیاں لگائیں کہ آپ کوئی بھی آرمی نہیں بنا سکتے اور آپ جو ہیں کوئی بھی طاقت کا سامان جو ہے بائے بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک مشکلات جاپان کے لیے اس وقت کھڑی ہوئی. لیکن امریکہ نے وہاں کیا کیا, وہاں جتنے بھی جو ریفارمز کیے, سب سے پہلے جو ریفارمز کیے وہ سیاسی ریفارم کیے وہاں امریکہ نے آ کر. جب بھی جنرل صاحب تھے, جنرل ڈگ, دیکھیں میں ذہن سے نام نکل گیا, میں دیکھتا ہوں جنرل صاحب کا نام آ جائے, امریکن جنرل وہاں تھے جو وہاں پر لیڈ کر رہے تھے اس چیز کو, اور انہوں نے سب سے پہلے ریفارم وہاں کیا جو کہ پولیٹیکل ریفارم تھا. وہاں پر ایک نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ایک نظام کو ترتیب دیا, اور اس پولیٹیکل نظام کے آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے, اس وقت یہ حالات تھی کہ زیادہ تر زمینیں جاگیردار, وہاں پر بھی یہی حال تھا کہ زمیندار اور جاگیردار لوگوں کے پاس اس وقت زمینیں تھیں اور ایک عام جو ورکر تھا, ایک عام فارمر تھا, وہ بالکل بدحالی کا شکار ہوتا جا رہا تھا. تو انہوں نے یہ کام کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے جتنی بھی زمینیں جو زمیندار اور جاگیرداروں کے پاس اس وقت تھی وہ لے کر, حالانکہ دیکھیں اب یہ کر کون رہا ہے, وہ ملک اس ملک کا جنرل وہاں بیٹھا رہا, وہ کر رہا تھا جس نے اسی ملک کے اوپر دو ایٹم بم گرا دیے. لیکن پھر جو تعمیراتی کام کا وہاں شروع ہوا سلسلہ, تو امریکہ نے ہی اپنا بیسٹ وہاں پر پرووائڈ کیا, اور امریکہ نے سب سے پہلے وہاں کے فارمرز کو جو ہے امپاور کیا اور انہیں اس قابل کیا کہ جو بھی وہ وہاں فصل اگانا چاہیں, جس حساب سے بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے جو ریفارم کیا, انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی, بیسٹ ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت جاپان کو پرووائڈ کی, اور ود ان دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہوا کہ جاپان نے 15 سے 20 سالوں میں, یعنی یوں سمجھ لیں گے 65 تک جاپان جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہو گیا تھا, کیونکہ جاپان نے جیسے میں نے بتایا کہ وہاں فوج رکھنے کی اجازت نہیں تھی اور بہت سے اسلحہ رکھنے کی خریدنے کی اجازت نہیں تھی. امریکہ نے جاپان سے, کیونکہ ان کو بہت زیادہ اس پر خرچ کرنے کے اپنے پیسے لگ جاتے تھے, وہ اپنی ایجوکیشن, ہیلتھ اور دوسری چیزوں پہ خرچ نہیں کر پاتے تھے, تو امریکہ نے سب جاپان سے یہ کہا کہ ہم آپ کی جو آپ انٹرنل اپنی ایک فورس بنا سکتے ہیں, جو انٹرنل معاملات کی جیسے پولیس کہہ لیں یا اور دوسری چھوٹی فوج جو کہ اندر ہی کام کر سکتی, لیکن بیرونی جتنی بھی آپ کو کوئی پرابلم, خدا نہ خاصا کو آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے, تو ہم اس چیز کو خیال کریں گے. اور اس وقت سب سے زیادہ جو امریکن فوجی اڈے بھی ہیں اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں وہ جاپان میں ہیں. تو جاپان نے کیا کہ ٹھیک ہے ہمارا دفاعی بجٹ جو ہے وہ اب ظاہر ہے ہمیں کسی چیز پہ خرچ نہیں کرنے, ہم نے کوئی جہاز نہیں خریدنے, ہم نے میزائل نہیں خریدنے, ہم نے دوسری اپنی دفاعی چیزوں کو نہیں خریدنا, جو کہ انہیں بعد میں جا کے ظاہر ہے ایک طریقے سے کوئی پرابلم بھی آئی بعد میں, انہوں نے چیز پہ اس کو دیکھا بھی, لیکن انہوں نے زیادہ پیسہ پھر کیا کہ اپنی عوام کے اوپر لگانا شروع کیا, اپنی انڈسٹری پہ لگانا شروع کیا, اپنی تعلیم پر لگانا شروع کیا, اور امریکہ کی بیسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ جاپان کے پاس موجود تھی. اور یہ حال ہوا کہ ود ان 25 ایئرز جاپان نے پہلی اپنی بلٹ ٹرین بھی جو ہے وہ اپنے ملک میں چلا دی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا آپ جتنے بڑے مطلب یہ 60s 70s 80s کا ٹائم یہ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیکنالوجی سے کوئی بھی ریلیٹڈ اگر کوئی چیز ہو تو وہ میڈ ان جاپان کا ٹھپا جو ہے وہ ریلائبلٹی اور پائیداری جو ہے نا, کہتے ہیں کہ بس جس مشین کے اوپر میڈ ان جاپان کا ٹھپا لگا ہوا ہے تو لوگ اس کو آنکھ بند کر جو ہے وہ خرید لیتے تھے. اور دنیا بھر میں جاپنیز جاپان کی جو پروڈکٹس تھیں جسے امریکن ٹیکنالوجی کا بیک اپ حاصل تھا اور انہوں نے محنت کر کے جو ہے آگے پہنچا دیا. کہا جاتا ہے کہ جو 1960 سے پہلے
जो एक आम एवरेज थी लोगों की जिंदगी वो कुछ 66 समझ लिया 55 to 60 रह गए। जाहिर परेशानियां थी, लोग ज्यादा नहीं रह पाते थे जिंदगी, लेकिन ये भी एक सर्वे का रिजल्ट है कि आफ्टर यू कह लें कि 1965 के बाद से जो जापान का है इनकी जो एवरेज इस जो है वो बढ़कर 65 से 70-75 हो गई। आज एक आम आज जो एक जापानीज है वो उसकी एवरेज एज जो है वो प्लस 80s हो चुकी है। ठीक है, ये इनको आगे चल के इसका नुकसान भी हुआ। आज की हम बात करेंगे तो आज का जापान को जो मुश्किलात हैं वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब बात करते हैं 1970 की। जापान उस वक्त अपनी हाईएस्ट पीक पर जब पहुंच जाता है, एक बार फिर वही मुल्क अमेरिका जिसने जापान का साथ दिया था तो वो एक बार फिर जो है वो हाथ मिलाता है चाइना के साथ, और वही सारी मंडियां जो जापान के लिए अमेरिका ने खोल दी थी, पूरी दुनिया खोल के रख दी थी। तो 1970 में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कैसे चाइना और आज हम बात करें तो अमेरिका एक दूसरे के साथ जो है वो कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन 1970 में जो है वो अमेरिका ने ही चाइना को जो है वो हाथ पकड़ा और चाइना के साथ मिलते, उस वक्त माओ साहब थे, और दुनिया जो है वो चाइना के लिए खोल दी 1970 में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने जो है देखें क्या तरक्की की कि वो नंबर टू इस वक्त दुनिया की मईशत पे पहुंच गई। जापान को जरूर उसने चाइना ने बीट कर दिया, क्योंकि चाइना को एडवांटेज था उसकी पॉपुलेशन का और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हब एज कम्पेयर टू जापान। हालांकि जापान में भी सारा मैन्युफैक्चरिंग हब अमरीका ने लगाया, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में बना क्योंकि उन्हें पॉपुलेशन का और मैन पावर का एडवांटेज था, तो चाइना जो है वो निकलकर आज दूसरे नंबर पर पहुंच गया, जो कि हम देख रहे हैं।
और तो मैं भी जो है थोड़े सी इसमें स्टोरीज जो है कुछ आपके ऐड करना चाहती हूँ। यानी जापान जो है, यू विल बी सरप्राइज टू नो, जब मैं पाकिस्तान में ये चीज सुनती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। चार मौसम हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, बर्फ है, सब्जियां हैं, आपके पास फोर सीजन में जो होती हैं फ्रूट्स हैं, यू हैव आपके पास कोल है, आपके पास कॉपर है, उसके अलावा अब ऑयल एंड गैस आ गया है, सोना है। You will be surprised to know this thing कि ये जितने natural endowments हैं जापान के पास जीरो हैं।
जीरो
जापान does not have a single natural endowment। इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी ship building industry चलाता है। आपको पता है कि ship building industry के अंदर high quality coal चाहिए। high quality क्या, low quality coal भी नहीं है जापान के पास, तो आप सोचें कहां से वो लाते हैं, कैसे करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ship building चलाते हैं। इसके अलावा जो आपने बात की जापान की कि कैसे इन्होंने किया, इनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अब आप ये सोचें कि इन्होंने ये कितनी रेजिलियंट कॉम है ये जापानीज जो है, कि इन्होंने जेनेटिक्स के अगेंस्ट जा तक के काम किया, क्योंकि आपको पता है। और दूसरा ये कि इनको कट थ्रोट्स कहा जाता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि ये गुजरते गुजरते इनके सिपाही जो थे किसी का गला काट देते थे, इतने ये बहादुर थे ऐसे। और फिर उसके बाद जो है अपने जहाज को जाके और किसी भी जो है वो शिप के ऊपर ऐसे जाके क्रैश कर लेते थे, तो
क्योंकि वो रुक ही नहीं रहे थे ना, जो एटम बम गिराने की वजह भी यही थी।
तो वो जो है इतने सख्त जान थे ये, और इतने ये खतरनाक थे। तो इनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त ये सारा खत्म हुआ मामला, तो उन्होंने कहा कि हमको इस वक्त दो चीजों पर काम जापान में करने की जरूरत है। एक तो ये कि आप छोटे कद के हैं और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स अपना या 30 ईयर दो इंच आपने अपना कद बढ़ाना है। और ये देखें जरा जेनेटिक्स के अगेंस्ट जाते हैं, दो इंच आपने अपना कद बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाना है, उसके लिए इन्होंने क्या एक्सरसाइजेस की, क्या डाइट्स ली, क्या साइंटिफिकली किया जिससे उनके कद बड़े होने शुरू हो गए जापानीज के। और दूसरा कि आप दुनिया की सबसे ज्यादा पोलाइट और डिसेंट नेशन बने।
बिल्कुल,
एज अ रिजल्ट मेरे बहुत सारे कजन हैं, मेरा अपना भाई जो है उसने कई दफा वो गया हुआ है टोक्यो में, वो कहते हैं जी कि आप जापान जाएं, हर वक्त कभी आपके पास मैप है और आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं, आप किसी भी जापानीज को दिखाएं, एक तो वो झुकेगा ऐसे हाथ रखेगा अपने सिरे पे, और आपको उसको बोलनी नहीं अगर आती अंग्रेजी भी, तो भी वो आपको लेके जाएगा उस जगह तक, और फिर आपको ऐसे फिर भी शुक्रिया बोलेगा कि आपका शुक्रिया। आप इतने पोलाइट हैं जापानीज, इंतहाई पोलाइट हैं। अच्छा, बहुत सारे जो हमारे कुछ यूरोपियन फ्रेंड्स और दूसरे भी कुछ हमारे होते थे, सारे पाकिस्तानियों ने तो खैर ज्यादा ही कीड़ा, वो जब जापानीज के साथ हम देखते थे जो कि कभी वो कोई डील कर रहे हैं तो ये जापानीज कोरियंस जो हैं बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं जब मीटिंग्स चल रही होती हैं, बोलते नहीं है। तो हमारा बंदा क्या समझता है कि वो ये तो बड़ा स्टूपिड है, इसको तो समझ, उनको सब समझ में आ रहा होता है, वो हमसे ज्यादा उनका तेज दिमाग चलता है, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या इस बंदे के साथ हमने बिजनेस करना भी है कि नहीं करना, ये हमें ट्रिक तो नहीं कर रहा, ये हमारे साथ ड्रामा तो नहीं कर रहा है, तो वो क्वाइटली आपको ऑब्जर्व करते हैं। और बिल्कुल जो है फेयर डीलिंग्स होती हैं जापानीज की, कोरियंस की, इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इनके साथ डील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ना कि आपको हम 30 डेज में पेमेंट कर देंगे या 60 डेज में कर देंगे, वो 30 का मतलब 30 ही है, 31 नहीं है, 60 का मतलब 60 ही है, 61 नहीं है। अगर उसने कहा ना मैं 4 बजे आपसे मिलने आऊंगा, 4 बजे का मतलब 4 बजे ही है, 4 बजे का मतलब 4:05 भी नहीं है। तो इन दो नेशंस का खास तौर पर कोरियंस एंड जापानीज को मैं बहुत, चूंकि मैंने क्लोजली वॉच भी किया है, मेरी अपनी फैमिली के भी बहुत सारे इनके साथ जो है लोगों के साथ डील्स हैं, तो वो कहते हैं एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, एक्सट्रीमली डिसेंट, बहुत ही लो प्रोफाइल के, और बहुत अगले बंदे की के टैलेंट का अगर इनको पता चल जाए तो फिर उसकी बहुत ज्यादा कदर करते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मेरे अपने भाई साहब जो हैं एक साउथ कोरियन कंपनी में एज अ सीएमओ काम करते थे, आप यकीन करें उनको इतने पर्क्स देते थे ये साउथ कोरियंस कि ये इतना बिगाड़ दिया था उन्होंने मेरे भाई को कि मेरा भाई किसी और जगह जाने के फिर काबिल नहीं था, वो सोच नहीं सकता था कि अगर मैं इनको छोड़ के जाऊंगा तो कैसे। तो ये जितनी भी ये कौमें जिनका आप राइज देखते हैं ना, जैसे अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये टैलेंट की बहुत ज्यादा कदर करते हैं, और जिसका इनको पता चल जाए ये आदमी टैलेंटेड है उसको फिर ये इतना स्पॉइल कर देते हैं कि आपको इतनी फैसिलिटीज दे देते हैं कि आप सोच नहीं सकते उनको। और इसीलिए आप देखें कि इनकी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, या खासतौर पे अगर आप वैसे भी अदरवाइज भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज का देखें, टर्न ओवर जो है इनका एम्प्लॉयज का बिल्कुल यानी जीरो पे होने के बराबर, क्योंकि उसकी दो वजह कि ये कभी भी गलत बंदे को उठाएंगे नहीं, हायर नहीं करेंगे, और जब राइट बंदे को हायर कर लेंगे तो फिर उसको जाने नहीं देंगे। चाइना की अब बात करते हैं, आपने क्योंकि जापान और चाइना दो लोगों की बात किया तो चाइना की भी हम बात कर लेते हैं। चाइना में बहुत बड़ा मुल्क था और इनको ओपियम ईटर्स कहा जाता था, इनको इतनी ज्यादा शिप करता था वेस्ट ओपियम के इनको खिला खिला के बस मस्त रखो और जो है ये उठने के काबिल ना रहे। फिर माओ जब आए, क्यों क्यों माओ का इतना बड़ा नाम है, माओ का इसलिए बड़ा नाम है कि उसने बिल्कुल जैसे अतातुर्क ने तुर्की में किया वैसे ही माओ ने अपने उसमें किया, उसने इनको घसीट के घरों से निकाला, उन्होंने कहा ये ओपियम वोपियम छोड़ो, ये नशे बंद करो, काम करना शुरू करो। एज अ रिजल्ट यूरोप जो है बहुत ज्यादा कहता है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन अब देखो कि कितनी डिसिप्लिन कौम है, चुप करके अपने काम करती है, और उस काम करने का फायदा आज ये हुआ है, ना उन्होंने कोई वॉर्स लड़ी है, ना किसी और के साथ लड़ते हैं, ना झगड़ा है, ना लड़ाई है, कभी मीटिंग्स में भी आप देखेंगे, दुनिया में भी वर्ल्ड मीटिंग्स में बैठे होंगे, कभी किसी के साथ बदतमीजी,
इवन आप देखें उनकी कामयाबी इतनी है चाइना की कि आई थिंक
दुनिया सारी को कर्जा दिया हुआ है उन्होंने।
ट्रेड वॉर में भी आपने कल भी खबर सुनाई, मैं परसों भी कि अगेन 90 डेज का एक्सटेंशन जो है वो उनको दे दिया गया, इसका मतलब दे आर वेरी टफ गाइज और उनको नेगोशिएट करना आता है,
क्योंकि बहुत बड़ी उनके पास है ये जो ये भी बात है कि पहले हम कहते थे ना कि कंज्यूमर मार्केट तो इंडिया की भी बहुत बड़ी है, अमरीका की बहुत बड़ी है, तो इनको लोग क्यों टफ टाइम दे रहे हैं, चाइना को इसलिए
बिलियन की आबादी इंडिया की
बिलियन की है, तो चाइना को आप इसलिए दे सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी कूल, बहुत आराम से काम करते हैं, और उन्होंने अपने आप को एक तो सारी दुनिया को कर्जा दे बैठे हुए, ठीक है, तो एक तो सारी दुनिया मकरूज है, ठीक है, ऊपर से हर चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने उसके लिए,
वही ना मैन्युफैक्चरिंग हब है वो।
हाँ, तो ये स्ट्रेंथ, वैसे मैं आपको बताऊं कि हम अपने मुल्क की बहुत टांगे खींचते हैं, ये स्ट्रेंथ पाकिस्तान में भी, आपको याद है जब कोविड का जमाना था जब बहुत सारे ऑर्डर्स बांग्लादेश से जो थे वो रोल ओवर कर दिए गए थे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक तो आ गया था, फिर फ्लड्स आ गए थे, तो बहुत सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान के पास आए थे, तो आप सोचें कि उस जमाने में पाकिस्तान की फैक्ट्रीज दिन रात काम कर रही थी और ये जो यूरोपियन ये जो ब्रांड्स थे इनके जो कपड़े जूते चीजें जो है प्रोडक्ट्स इनके लिए बना रही थी, तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा है, एक तो आप चाइना के नेबरहुड में बैठे हुए हैं, आप भी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, जो थोड़ी बहुत कमियां जो प्रॉब्लम है जैसे कि जी बिजली नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही, पावर, इन सब के ऊपर अगर आप कंट्रोल कर लें और अपने टेररिज्म के पे कंट्रोल कर लें, आप देखो पाकिस्तान कैसे रॉकेट की स्पीड पे ऊपर जाएगा।
वही बात कर रहा हूं ना शाह, देखें हम बात करते हैं पाकिस्तान में भी, अब इसको किसी और दिन जापान पे और डिटेल बात कर लेंगे, बात करने का मकसद यही था कि अगस्त के महीने में आज क्योंकि 14 अगस्त हो गई है पाकिस्तान में और यहां पर कल है, तो एक ऐसी कौम है जिसके ऊपर एटम बम्स गिरा दिए गए और आज वो दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन के सामने आ गया। और 1970 से तो ये अमरीका के बाद दूसरे नंबर पर इनकी इकॉनमी थी, लेकिन फिर जाहिर है मैंने सबको बताया कि माओ के टाइम के बाद 1970 के बाद चाइना ने जो है वो इनको बीट किया और दूसरी इकॉनमी जो है दुनिया की बन गए और उसके बाद ये नीचे आते चले गए। जापान की जो मैं बात करूं, जो स्टार्ट मैंने किया था कि देखें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जरूरी होते हैं, जाहिर है पैसे के बगैर तो नहीं होंगे, और यही अमेरिका ने सबसे पहली चीज जो जापान को इंश्योर किया कि जनाब आपने अपने जो खर्चे हैं वो अपने आवाम के ऊपर लगाने, तालीम पे लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है, फैक्ट्रीज पे लगाना है, या अपने जो हुकूमती मामला है उन पर लगाना है। उन्होंने अपने दूसरे खर्चों को जो है वो कट डाउन किया, उन्होंने सबसे पहले आके रिफॉर्म जो किया अमेरिकन ने उनका जो एक कहते हैं ना कि हुकूमती निजाम है उसको उन्होंने जो है वो मजबूत किया। सबसे पहले एक आम आदमी को एम्पावर किया कि जनाब जो गांव में रह रहा है उसको इतना एम्पावर कर दो वो वहीं गांव में ही रहे, वहीं वो अपनी फसल उगाए, अपनी खेतीबाड़ी करे और उसको उसका जो अजर है उसको वहीं मिल जाए। जैसे अभी शायद जी बता रही है वहां जापान में ये हालत एम्प्लॉयमेंट की जो बात कर रही है कि एक आम आदमी जब एक छोटे लेवल से जब लगता था किसी जगह पे जॉइन तो वहां कंपनी कल्चर और वहां का ये होता था कि वो जब रिटायर होता था तो वो अपनी एक हाईएस्ट पोस्ट पे जाके रिटायर होता था और वो उसी फैक्ट्री में काम करना एक ही में सारी जिंदगी। ये हाल था जापानीज का कि जहां लगे हुए वो सारी जिंदगी वहीं काम करते हैं और वहीं तरक्की पाते पाते जो है वो रिटायर हो जाते हैं। आज जापान के चैलेंज जो है वो डिफरेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी जो एज है वो 80 प्लस हो गई है और इस वक्त जापान को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है जो उनकी एजिंग पॉपुलेशन का, और इस वक्त वहां जापान में जो हालात हैं क्योंकि हुआ क्या कि जो 80s के बाद से 80s या 90s के बाद से खासकर बहुत सारा जो है वो जापानीज जो आम बंदा है वो गांव देहात से उठकर जो है वो शहरी आबादी की तरफ आ गया कि उनको ज्यादा जो है वो फैसिलिटीज वहां मिलती है। इससे हुआ क्या कि चीजें वहां महंगी होना शुरू हो गई। एक आम आदमी के लिए इस वक्त जापान में किसी भी बड़े शहर में अपने आप को अफोर्ड करना, चाहे मियां बीवी दोनों ही क्यों ना हो, वो दिन रात एक काम करते हैं और उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। इसीलिए जापान में जो बर्थ रेशियो है बच्चों की आपको मैं बताऊंगा वो नेगेटिव है। आप बिल्कुल मैं आपको
पैसे दे रहे हैं इस वक्त जापानीज गवर्नमेंट जो है पैसे
वो नेगेटिव है और वहां बच्चे पैदा वहां के जो यंग कपल्स हैं वो बच्चे पैदा यानी शादियां कर रहे हैं लेकिन वो अपनी
शादियां भी नहीं करते।
शादी पर तो कहने जो भी उनका लिविंग रिलेशनशिप है ये शादियां भी नहीं करते
हैं और शादियां अगर
वो महंगाई है शादिया जी वहां इतनी महंगाई इस वक्त है जापान में शहरों में कि आप नहीं रह सकते। उसी वजह से इस वक्त जापान को एजिंग पॉपुलेशन का सामना आ गया, लेकिन फिर भी इस वक्त देखें चौथी बड़ी जो है मईशत है दुनिया की। तो क्या हम अपने ऐसा पाकिस्तानी सोचे 1947 को हम भी आजाद होते हैं और हम एक दुनिया के नक्शे पे आते हैं, लेकिन आज तक हम अपनी उन चीजों को जो बेसिक चीजें हैं उनको रिफॉर्म नहीं कर सके, हम एम्पावर ही नहीं कर सकते उस एक आम आदमी को जिसने इस मुल्क की तरक्की के इस पहिए को चलाना है। हम
उसमें एक और भी बात आपको जापान की बताऊं कि जापानीज जो है उनमें शेम का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। वहां पे अगर आप किसी लीडर को बोल दें कि ये करप्शन में इन्वॉल्व था, आपको पता है वो खुदकुशी कर लेता है, वो खुदकुशी कर ले, वो सिर्फ ये नहीं होता कि अपनी कुर्सी छोड़ता है। तो हमारे मुल्क में तो कितने ही लोगों के पास सांभा, कितने ही
चले, वो तो खैर एक पॉलिटिकल
हाँ,
बात है
हाँ, नहीं नहीं ये तो आपने कहा ना कि क्यों राइज नहीं किया,
राइज से हुआ कि जाहिर जो वैल्यूज हैं जो पॉलिटिकल विल नहीं है और जो मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल विषय के लिए निजाम नहीं बन सका और आज तक भी वो पॉलिटिकल निजाम जो है वो जापान की तरह हमने यहाँ रिफॉर्म्स नहीं किए। तो हम ज्यादातर जब भी देखें जितने भी लीडर्स हैं जितने भी पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान में हैं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात तो जरूर करते हैं, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की जरूर बात करते हैं, क्या कभी किसी ने सोचा कि निजाम को रिफॉर्म कैसे किया जाए, खासकर जो पॉलिटिकल निजाम पाकिस्तान में जो फरसूदा निजाम है जिसका मतलब कोई सर पैर ही नहीं है, बाप से लेके दादा मतलब दादा से लेके उसका बेटा उसका बेटा उसका पोता, मतलब एक सिलसिला जो है इस वक्त पाकिस्तान में चला गया। और आज हम 78 वर्ल्ड डे मना रहे हैं और इस वक्त हमारा बदहाली का शिकार यह है कि हम जो है वो पता नहीं किस कोने में हमारी मुल्क की मईशत है, किस कोने में हम जो है वो खड़े हुए, हम बस टेम्परेरी चीजों को कहते हैं ना कि हम अभी एक जगह मैं पढ़ रहा था शाजा जी वहां ये हुआ कि फर्स्ट करने आप कोई टारगेट बनाते हैं तो अक्सर कहते हैं कि यार ये टारगेट तो बना दिया लेकिन इसके लिए मोटिवेट कैसे करें अपने आप को। एक आम आप लोग जिंदगी में मैं एक जगह पढ़ रहा था और मैं फर्म बिलीव इन दिस पे, और मैं अपनी लाइफ में भी इस चीज को बिल्कुल 100% फॉलो करता हूं कि कभी भी जब आप किसी चीज का टारगेट बना लिया है तो भजन, जब टारगेट बना लिया है तो उसको अचीव करो ना, इसके लिए भी कोई मोटिवेशन की आपको जरूरत है। अगर आपको कोई टारगेट हासिल करने के लिए मोटिवेशन होने की जरूरत पड़ गई तो इसका मतलब आप उस टारगेट को कभी अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे नजदीक मोटिवेशन
हार्डवर्क की आदत नहीं है।
मोटिवेशनल का कोई वर्ड मेरी जिंदगी में तो कम से कम नहीं है, और हर पाकिस्तान की जिंदगी में मोटिवेशन का वर्ड होना ही नहीं चाहिए। जिस दिन आप डिसिप्लिन हो जाएंगे ना, उस दिन आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। नो मैटर व्हाट, कि आपको एक दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 15 साल लग जाएं आपको, 20 साल लग जाएं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन है, पाकिस्तानी जितने भी हैं, जो भी हमारे सियासतदान हैं, जो करता धरता है, अगर वो बड़े हम शोर शराबा करते हैं जी, बस एक चिंगारी लगती है जी, बस वो जी हमने 6 तैयारी गिरा दी है, ये हो गया, फला हो गया, कौम मोटिवेट हो गई है, कौम ने ये कर दिया, वो कर दिया, तारे लग गए, तमगे लग गए, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या डिसिप्लिन है, हम ये कब तक चलेगा? 6 महीने के बाद जो है फिर हम बातें सुन रहे होंगे कि यार एक्सटेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक्सटेंशन दोगे कि नहीं दोगे, नया प्राइम मिनिस्टर कौन आएगा, क्या होगा। हम डिसिप्लिन नहीं रखते लाइफ में, हमारे पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी से लेकर लीडर तक डिसिप्लिन नहीं है। जो कौमें तरक्की करती हैं वो मोटिवेट जरूर होती हैं, लेकिन वो अपने उस टारगेट को हासिल करने के लिए डिसिप्लिन होती हैं। उनकी जिंदगियों में, आज जापान की छोटी सी बात की, अगस्त के महीने में बम गिरे दो, तो मैंने कहा चलो आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हम, अब हमारे ऊपर तो रोजाना बम गिर रहे होते हैं, तो हम कब डिसिप्लिन होंगे, हमारी आंखें कब खुलेंगी, इस कौम की आंखें कब खुलेंगी कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, अपने आप को डिसिप्लिन कर सकें। हम, मैं एक नॉर्मल सी मिसाल दे दूं, हर साल हम एक अपना जो है ना जनवरी 1 को या जनवरी 1 को जो है अपना एक रेजोल्यूशन बनाते हैं जी, मैं ये काम करूंगा इस साल, मैं अपना 10 kg वेट कम कर लूंगा, फला कर लूंगा, ये पहले दिन जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं अक्सर लोग तो सर, लेकिन होता क्या है, विद इन वीक जो है जिम की मेंबरशिप चाबी की कीम है ना लटक रही होती है, और हम जिम नहीं जाते सर, ना जाएं जिम सर, ना वादे करें, सिर्फ अपना टारगेट बनाएं कि जी मुझे अपना वेट कम करना है, और रोजाना 1 घंटा ही वॉक सिर्फ अपने मोहल्ले में कर लेंगे ना, आधा घंटा रोजाना, तो आप जब अगले 31 दिसंबर तक पहुंचेंगे ना, तो आप अपना टारगेट उससे पहले अचीव कर चुके होंगे, रादर देन कि आप मोटिवेट हो जिम जाने के लिए करें, 1 हफ्ता जिम जाएंगे, नहीं जा सकेंगे, जाएं जिम, मैं कहता हूं कि डिसिप्लिन आप ला सकते हैं तो जिम भी जाएं, जिम बुरा नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन ऐसे नहीं आएगा कि बस एक दिन चिंगारी लग गई है जी, वाह वाह बल्ले बल्ले, और अगले दिन जो है वो अंडा बिल्कुल जीरो जमीन पर आ
जाए।
चले जनाब प्रोग्राम में गाना शामिल करते हैं, कुछ स्पॉन्सर्स का जिक्र करते हैं। जनाब आप खाने पीने के लिए अगर बाहर निकले तो आपने कहां जाना है, विलेज स्टेज जाएं जनाब, बुफे एंजॉय कीजिए, बहुत ही जबरदस्त बफे आपको यहां मिलेगा, ऑन्टेरियो का लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे, क्योंकि शाम का टाइम है तो बच्चों की भी छुट्टियां हैं, और आप अगर बाहर ड्राइव कर रहे हैं तो आपने जो है वो विलेज स्टेज जाना है। इनका नंबर है 9052323663, 9052323663। इसके अलावा जनाब अगर आप ईस्ट एंड में हैं तो शाहीन टिक्का इन कबाब पर जाइए, यहां जावेद भाई होते हैं, और बहुत ही मजेदार कढ़ाई बारबेक्यू और आपको बिरयानी जो है खाने को मिलेगी शाहीन टिक्का इन कबाब पर। अगर आप ईस्ट एंड में तो शाहीन टिक्का इन कबाब भी जरूर जाइएगा। और जनाब आपके ईस्ट एंड में फंक्शन होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, धर्म समर फेस्ट 2025, 23 और 24 अगस्त को आपने सबने पहुंचना है ईस्ट एंड पे, जहां 23 अगस्त को परफॉर्म करेंगे मुस्तफा जाहिद, और 24 अगस्त को वन एंड ओनली रहीम शाह परफॉर्म करेंगे, और इस इवेंट की कोई टिकट नहीं है, और यहां पार्किंग भी आपको फ्री मिलेगी। दोपहर 2-3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ये रंगारंग प्रोग्राम चलेगा, और फूड स्टॉल होंगे, बच्चों के लिए बहुत सारी राइड्स होंगी, और आपके जो है बहुत सारी शॉपिंग के भी स्टॉल आपको मिलेंगे। तो आपने पहुंचना है कहां पर, एजेक्स में, एजेक्स को पार्किंग में, और जैसा मैंने कहा इसकी कोई टिकट नहीं है, और यहां पार्किंग भी आपको फ्री मिल जाएगी। तो 23 और 24 अगस्त को आपने पहुंचना है धर्म समर फेस्ट 2025 को। चलिए जनाब बहुत बातें हो गई, 14 अगस्त मना ली, ठीक है ना, अब क्या मोटिवेट होंगे कि डिसिप्लिन होंगे? सर डिसिप्लिन सोचिएगा इस बारे में, अक्सर लोग को नहीं समझ आती इन बातों को, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। मोटिवेट होना, डिक्शनरी से वर्ड ही निकालते हैं तो कामयाब हो जाएंगे। चले जनाब प्रोग्राम में एक गाना शामिल करते हैं, गाना है मर जावा, ओए अल्लाह खैर करे किस पे मरवा दिए शादी जी आप, और मूवी का नाम है फैशन, और इसमें प्रियंका चोपड़ा थी इस मूवी में, कंगना रनावत थी। तो आइए गाना सुनते हैं मर जावा, आई होप के गाना अच्छा होगा, मैंने गाना सुना नहीं है, लेकिन शाजिया जी को पसंद है तो आई होप के गाना आपको भी पसंद आएगा। 4166201778 हमारा नंबर है, 4166201778।
Listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Asian Food Center ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਸੇਲ। 20 ਪੌਂਡ ਲక్ష్ਮੀ ਚੱਕੀ ਆਟਾ 10.99, ਸਵੇਰਾ ਖੋਇਆ 5.99, 2 ਪੌਂਡ ਵਾਗ ਬੱਕਰੀ ਟੀ 10.99, 8 ਪੌਂਡ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਈਸ 7.99। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਡਰ 1 ਰੂਫ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਸੇਲ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਾਲ ਐਟ 416-740-3262।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान ताज़ो आवाज़ के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
क्या आपके घर के अप्लायंसेज खराब हैं? अब फिक्र की कोई बात नहीं, सीजीसी होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग ला रहा है आपके लिए एक माहिर टेक्नीशियन जो आपकी अप्लायंसेज रिपेयर करके देंगे बेहतरीन सर्विस के साथ। चाहे आपका एसी हो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, डिशवॉशर या माइक्रोवेव, जो भी आपके अप्लायंसेज खराब हो ये उसको रिपेयर करके देंगे और इनकी डायग्नोस्टिक फीस है सिर्फ $90। तो आज ही कॉल कीजिए 416-571-4895 या इनकी वेबसाइट विजिट कीजिए cgcappliances.com।
वहमों गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास।
प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल और कमर्शियल, बाइंग और सेलिंग,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या फिर कॉन्डोमिनियम्स इन द डाउनटाउन टोरंटो,
वी विल अरेंज योर मॉर्गेज,
आल्सो अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट।
सर्विस इज आवर प्रायोरिटी,
कस्टमर सर्विस इज आवर प्राइड। प्लीज एक्सपीरियंस द डिफरेंस। आप घर खरीदना या घर को बेचना चाहते हैं, घर की इवैल्यूएशन के लिए एक दफा कॉल कीजिए आरिफा मुजफ्फर
Listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
B&K Events brings you Durham Summer Fest 2025 featuring the legendary Rahim Shah on August 24th at Aegis Go Parking on Day 2. All with free parking and free admission. to inquire about sponsorship, vendor opportunities, or for more details, please contact 416-897-1683 or visit www.bnkevents.ca.
Asian Food Center ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਸੇਲ। ਵੀ ਪੌਂਡ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚੱਕੀ ਆਟਾ 10.99, ਸਵੇਰਾ ਖੋਇਆ 5.99, 2 ਪੌਂਡ ਵਾਗ ਬੱਕਰੀ ਟੀ 10.99, 8 ਪੌਂਡ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਈਸ 7.99। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਡਰ 1 ਰੂਫ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਸੇਲ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਾਲ ਐਟ 416-740-3262।
अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजुर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मीन परमार, प्रिंसिपल ब्रोकर। कॉल टुडे 647-923-5659, 647-923-5659। स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी। लाइसेंस नंबर 13654।
Grill in the Hut, Mrs. Saga Mir. Order via phone. Imran Bhai ko call kare.
Intihai lazeez biryani khana ho, ya phir kadai khana ho, ya phir steaks ko enjoy karna hai. To aap order place kijiye 905-405-8383. Grill in the Hut.
वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास।
प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल और कमर्शियल, बाइंग और सेलिंग,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या फिर कॉन्डोमिनियम्स इन द डाउनटाउन टोरंटो।
वी विल अरेंज योर मॉर्गेज,
आल्सो अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट।
सर्विस इज आवर प्रायोरिटी,
कस्टमर सर्विस इज आवर प्राइड। प्लीज एक्सपीरियंस द डिफरेंस। आप घर खरीदना या घर को बेचना चाहते हैं, घर की इवैल्यूएशन के लिए एक दफा कॉल कीजिए आरिफा मुजफ्फर 6478986245 8986245। Painters of GTA for your home paint or office paint, interior or exterior, popcorn ceiling ko remove karna, water damage, if there are yellow spots in ceiling, call Painters of GTA. Water damage mein agar yellow spots aapki ceiling pe hain, ko remove karke bedaag karenge. Texture style painting, which is the latest Italian style painting, ya wallpaper lagwana chahte hain, to call kijiye Texture style painting ke liye Painters of GTA 647-271-1974. Mohammed Salim 647-271-1974.
देखो बिल्कुल गए, एक घर के सारे You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Village Taste पूरे ओंटारियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है. कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है. बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे. आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल. विलेज टेस्ट 9052323663 विलेज टेस्ट.
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगु, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन. फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466.
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो.
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ.
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर.
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट.
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज, 416-792-8792.
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक.
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ, 416-792-8792. अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, 416-792-8792.
मजे मजे के सिक्के, मजे के कबाब.
खाना हो तो आ जाओ शाहीन, शाहीन टिक्का और कबाब.
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब, बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम.
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल.
Spear & McGay Menswear, fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compare कर सकते हैं आप Harry Rosen, Burberry और Hugo Boss से. 100% Italian wool suits from $249.99, 100% Egyptian cotton shirts from $29.99, 100% Italian wool trousers from $49.99. We have moved to a new location in Heartland Town Center, 775 Britannia Road West, Unit 7B, Mississauga पे. हम Sundays को भी open हैं. इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कीजिए एट 905-670-3388 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट spearandmckay.com.
BMK Events brings you Durham Summer Fest 2025 featuring rock star Mustafa Zahid on August 23rd at Ajax Go Parking on day 1. All with free parking and free admission. To inquire about sponsorship, vendor opportunities, or for more details, please contact 416-897-1683 or visit www.bmkevents.ca.
कैलेडन सब्जी फार्म ते हो रही है धमाकेदार सेल, सिर्फ वीरवार इस थर्सडे नू 5 to 9 PM तक. साग सिर्फ $1, लौकी ते कद्दू सिर्फ $1.50, ते होर सारियां ताजा सब्जियां डायरेक्ट फार्म तो. आ जाओ अपने दोस्तों नाल, ले ओ शॉपिंग बैग ते कर लो अपना कार ताजियां सब्जियां नाल. याद रखो सिर्फ वीरवार यानी कल 5 to 9 PM तक कॉल करो एट 905-840-9000. कैलेडन सब्जी फार्म, ताजा सब्जी, सब तो वधिया रेट.
वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास.
प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल और कमर्शियल, बाइंग और सेलिंग,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या फिर कॉन्डोमिनियम्स इन द डाउनटाउन टोरंटो.
वी विल अरेंज योर मॉर्गेज,
आल्सो अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट.
सर्विस इज आवर प्रायोरिटी,
कस्टमर सर्विस इज आवर प्राइड. प्लीज एक्सपीरियंस द डिफरेंस. आप घर खरीदना या घर को बेचना चाहते हैं, घर की इवेल्युएशन के लिए एक दफा कॉल कीजिए आरिफा मुजफ्फर, 6478986245.
हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा,
ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਸਾਫ ਜਿਹਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੁੱਟੇ ਯਾਰ ਨੇ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਪਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਰਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਰਟੀਨੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਕੀਨੋ ਕੱਲ ਹੀ ਤੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਮਰ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪਰਸ ਤੂੰ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਵੈਲੈਂਟੀਨੋ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਿਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰਾ ਤੌਬਾ 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 ਹੁਸਨ ਤੇਰਾ ਤੌਬਾ 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 ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਸੀਫਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਦੇਖਦੀ ਨੀ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੱਚਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚਿਲ ਕਰੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਰੀ ਨੀ ਭੋਰਾ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਜਿਸ ਤੋਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ ਲੱਗਦੀ ਬਾਗ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀਏ ਸਰੀਲੀ ਨੂਰੀ ਵਰਗੀ ਜਦੋਂ ਲੱਕ ਹਿੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨੋਹਰਾ ਲੱਗਦੀ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇਰਾ ਤੌਬਾ 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 ਹੁਸਨ ਤੇਰਾ ਤੌਬਾ 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 ਹੁਸਨ ਤੇਰਾ ਤੌਬਾ 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 ਹੁਸਨ ਤੇਰਾ ਤੌਬਾ 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 ਤੌਬਾ
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 ایم ڈائل پر پروگرام ساز و آواز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد آپ کا ہمارا ساتھ آج بھی تقریباً 8:15 تک رہے گا اور اب شاہدہ جی سے جو ہے وہ چار لے لیتے ہیں کیونکہ صبح سے آئی ہوئی ہوتی ہیں کام کر رہی ہوتی ہیں مصروف رہتی ہیں سارا دن ہی تو شاہدہ جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ شامل رہنے کے لیے اور انشاءاللہ زندگی رہے
گی
یہ توبہ ہر انسان کو کرنی چاہیے
تمہیں خاص طور پہ
استغفر اللہ
میں کہوں گی میری تیرے ساتھ صبح سے کام کر رہے ہیں تو
اسی لیے میں آپ کو چھٹی دے رہا ہوں
بس چھٹی دیں گے
آپ چھٹی کریں اور انشاءاللہ زندگی رہی اور آپ زندہ رہیں
ٹھیک ہے
تو آپ سے کل انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی ٹھیک ہے جی چلیں بہت شکریہ آپ کا تمام سامعین اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام کو سنتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ نے ہمارا جو یو ٹیوب چینل ہے ای آواز ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن اس کو ضرور آپ نے جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو گوگل ریویو ہے وہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور اپنے ریویوز اس میں ایڈ کریں سازو آواز براڈ کاسٹنگ لکھیں گے تو آپ کو ریویوز کا سیشن کھل جائے گا تو آپ نے اپنا ریویوز اس میں ایڈ ضرور کرنا ہے جناب اگر کہا سنا ہو کوئی ایسی چیز ہو دل پر گرا گزری ہو تو معذرت چاہتے ہیں اب اجازت لیتے ہیں آپ کو مظفر صاحب کی طرف سے ماجد جمال صاحب کی طرف سے نبدیپ اور ویسنا کی طرف سے میں آپ کا ہوسٹ عامر احمد ان شاء اللہ زندگی رہی اور صحت رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے السلام علیکم
$350
میری سیونگ صرف $100
اور میری سیونگ سب سے زیادہ ہوئی ہے میں نے سیو کیے ہیں $1,775
کیا چمتکار کیا مجھے بھی گر سکھاؤ نا
وہی بات سادہ سی ہے ہمارے پاس دو گاڑیاں اور ایک گھر ہے اور ان سب کی انشورنس ملا کر میں نے زبردست سیونگ کی ہے اور یہ جادو کیا ہے آل اسٹیٹ پکرنگ ایجنسی کے راجا پاشا نے آپ بھی اپنی گاڑی اور گھر کی انشورنس میں خوب سیونگ کر سکتے ہیں ٹرم اینڈ کنڈیشن اپلائی آل اسٹیٹ پکرنگ ایجنسی کے راجا پاشا
670 AM لوکل نمبر 6478724900